हरे कृष्णा
हरे
कृष्णा तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, रामनवमी आने वाली है और पिछले दो दिन से, आज तीसरा दिन है राम कथा का। नीति शास्त्र में बताया गया है, नीति शास्त्र में एक श्लोक आता है, प्रातः द्यूत प्रसंगेन मध्यान्ह स्त्रीय प्रसंगेन रात्रौ चोर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमताम। यहां पर बताया गया है नीति शास्त्र में, बुद्धिमान व्यक्ति, उसके लक्षण बताए गए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कैसा होता है? प्रातः सुबह सुबह द्यूत प्रसंगेन, किस चीज की चर्चा करता है? गैम्बलिंग की। बुद्धिमान व्यक्ति है। मध्यान्ह दिन के समय स्त्रीय प्रसंगेन, दिन के समय स्त्रियों की चर्चा करता है, बहुत बुद्धिमान है। रात्रौ चोर प्रसंगेन, रात को क्या करता है? चोरों की चर्चा करता है। कालो गच्छन्ति धीमताम, और बुद्धिमान व्यक्ति अपना पूरा दिन इसी प्रकार से व्यतीत करता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो प्रातः द्यूत प्रसंगेन, सुबह सुबह गैम्बलिंग की चर्चा करता है, मतलब महाभारत पर चर्चा करता है। मध्यान्ह स्त्रीय प्रसंगेन, मध्यान्ह दिन के समय क्या करता है? स्त्रियों की चर्चा करता है ना, रामायण पर है ना, सीता माता के चरित्र पर चर्चा करता है। रात्रौ चोर प्रसंगेन, चोर से तो आप प्रसिद्ध होंगे ना, चोर कौन है? तो रात को वो कृष्ण कथा करता है, कृष्ण की चर्चा करता है ना? और अपना पूरा दिन इसी प्रकार से व्यतीत करता है। सुबह महाभारत पर चर्चा करके, दिन में रामायण पर, और रात्रि के समय श्रीमद् भागवतम पर चर्चा करके। तो ये जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत, एक व्यक्ति को किस प्रकार से, व्यक्ति की क्या इंटीग्रिटी, डिग्निटी होनी चाहिए, किस प्रकार से व्यक्ति का दिनचर्या होना चाहिए, उसकी कृष्ण भावना भावित किस प्रकार से होना चाहिए, और अपनी डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में उसको किस प्रकार से अपना दिन व्यतीत करना चाहिए, ये सब इन शास्त्रों में बताया गया है। एक बार दो व्यक्ति थे, दो लोग थे, एक गड्ढा खोद रहा था और दूसरा गड्ढा बंद कर रहा था। वो फिर गड्ढा खोदता था, वो फिर गड्ढा बंद कर देता था, वो फिर गड्ढा खोदता था, वो फिर बंद कर देता था। एक बुद्धिमान व्यक्ति देख रहा था, पास में खड़ा हुआ, कह रहा, भाई साहब क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो आप? वो कहता, देखो गड़बड़ ये हो गई है, हमारी टीम की टीम थी, मैं गड्ढा खोदता था, दूसरा वाला बीज डालता था, तीसरा वाला बंद करता था, वो दूसरा वाला ना आया नहीं है। तो हम लोग जब ये शास्त्र सुनते हैं, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, हम जब ये ग्रंथ पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो हम इसी प्रकार सुनते हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता होता, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए चल रहा होता है। आजकल रामायण, महाभारत, ये सब एक टीवी सीरियल्स रह रहे हैं, या फिर रामनवमी से पहले रामलीला होगी है ना, तो रामलीला पे स्टेज शो के लिए बहुत अच्छा लगता है ना। पर इन सभी शास्त्रों से, इन सभी स्क्रिप्चर से हमें क्या लेसन्स लेना चाहिए, क्या इंस्ट्रक्शंस लेनी चाहिए, वो हम नहीं समझ पाते। तो श्री रामायण में बहुत सारी टीचिंग्स, राम जी के चरित्र से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत सारी टीचिंग्स मेंशन है, तो कुछ टीचिंग्स पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पर अगर हम लोग टीचिंग समझेंगे तो इस प्रकार से समझेगा कि हम अपने लिए समझे, किसी और के लिए नहीं। तो दशरथ महाराज बहुत ही ऑपुलेंट, बहुत ही उनका जो ऐश्वर्य था बहुत ही ज्यादा था, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, बहुत ही रिच थे, बहुत ही धनवान थे, सब कुछ था उनके पास, आज्ञाकारी पत्नियां थी, सब कुछ था। पर इसके बाद भी उनका कोई संतान नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। एक आचार्य बताते हैं कि भगवान पर्पसफुली लेट आए थे, पर्पसफुली लेट आए थे यह बताने के लिए कि भौतिक जगत का, भौतिक जगत किस प्रकार से है, ये मेटेरियल वर्ल्ड किस प्रकार से, दिखाने के लिए कि इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता, पूरी तरीके से खुश नहीं रह सकता। एक शब्द हमारे लिए बहुत आजकल कॉमन माना जाता है, बट। सब कुछ अच्छा चल रहा है प्रभु जी, चैंटिंग अच्छी चल रही है, हियरिंग अच्छी चल रही है, रीडिंग अच्छी चल रही है, बट। वो बट का क्वेश्चन मार्क हमेशा होता है, बट, लेकिन, लेकिन, लेकिन। सब कुछ अच्छा है, घर अच्छा है, गाड़ी अच्छी है हमारे पास, पर बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे कहना मानते हैं पत्नी अच्छी है, पर हमारे पास धन की कमी है। धन है, गाड़ी है, पर पत्नी आज्ञाकारी नहीं है। बट ये बट हमेशा रहता है। ये भौतिक संसार को इस प्रकार से बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति गलती से भी कंफर्टेबल ना हो जाए यहां पर, तो ये ना मान बैठे कि सब कुछ है ये बस, है ना, यही भौतिक संसार सब कुछ है ना। ये ब्लैंक हमेशा रहता है, जैसे फिल इन द ब्लैंक होता है ना, ये ब्लैंक हमारी पूरी लाइफ के अंदर ये ब्लैंक हमेशा रहता है। और ये ब्लैंक कब भरेगा? जब हम इस ब्लैंक को कृष्ण या राम से भरेंगे, तो हमारा जो लाइफ है कंप्लीट होगा। तब तक उससे पहले हमारा लाइफ कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो इस ब्लैंक को हमें कृष्ण और राम से भरना पड़ेगा, कृष्ण और राम की लीलाओं से भरना पड़ेगा। और श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में भी हम देखते हैं किस प्रकार से, जब यदुवंशी थे, उनका जो पूरा लाइफ इतना बढ़िया था, है ना, भगवान के साथ रहना, भगवान के साथ एंजॉय करना, हमेशा भगवान के दर्शन करना, है ना, कुछ मित्र के समान थे, कुछ पुत्र थे, कुछ पौत्र थे, सब कुछ बहुत कंफर्टेबल था। बट एंडिंग बहुत खराब हुई। भगवान ये दिखाना चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति कंफर्टेबल नहीं हो सकता। आप ये नहीं बोल सकते कि ये व्यक्ति बहुत कंफर्टेबल जिया इस भौतिक संसार में, ये सिर्फ हिंदी पिक्चरों में अच्छा लगता है, एंड दे लिव्ड हैप्पीली फॉरएवर, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए देवामित स्वामी महाराज अपने एक लेक्चर में बताते, अनलिमिटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन केवल दो जगह पॉसिबल है, एक तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और एक इमेजिनेशन में, बस। तीसरी जगह अनलिमिटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। एक बार श्री प्रभुपाद हृदयानंद महाराज के साथ जा रहे थे, तो एक स्पैनिश लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था, तो श्री प्रभुपाद ने पूछा महाराज से, महाराज ये क्या लिखा हुआ है? तो महाराज ने बोला इस पर लिखा हुआ थ्रो योर गार्बेज हेयर। श्री प्रभुपाद कहते अच्छा, देन वी मस्ट थ्रो होल मेटीरियल वर्ल्ड इन दिस। पूरा मेटीरियल वर्ल्ड गार्बेज, कचरा एकदम ना। और श्रील प्रभुपाद ने अपनी इंस्ट्रक्शंस में हर जगह जगह क्लियर किया है कि ये भौतिक जगत क्या है, क्या है भौतिक जगत, क्या है, अभी भी ये कन्विंस नहीं है आप, क्या है ये? दुखाल्यम है भौतिक जगत, है ना, दुखों का घर है, आल्य है। श्रील प्रभुपाद एक बार कुछ भक्तों के साथ वॉक पर जा रहे थे, तो वॉक पर जाते जाते प्रभुपाद ने देखा कि गार्डन था, एक पार्क था, वहां पर लिखा होता चिल्ड्रन फेरी लैंड। श्रील प्रभुपाद मुड़े और बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग की तरफ देखा प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने बोला एडल्ट्स फेरीलैंड। एक बार मेक्सिको में श्रील प्रभुपाद थे और श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे, मैं इस टॉपिक को ज्यादा नहीं लूंगा, भक्तों को थोड़ा हर्ट करेगा। तो प्रभुपाद के शिष्य को ना कुछ मच्छर काट रहे थे, मतलब ये समझना हमारे लिए बहुत आसान है इस बात को। तो डिवोटीज ने श्रील प्रभुपाद को बोला श्रील प्रभुपाद दे आर नॉट बाइटिंग यू, दे नो यू आर प्योर डिवोटी। प्रभुपाद कहते हेयर दे मे नो बट इन कोलकाता दे मेक नो डिस्टिंक्शन। तो भौतिक जगत इस प्रकार से बनाया गया, कोई ना कोई चीज, सब कुछ बढ़िया है, सारी चीजें कंफर्टेबल है भक्ति करने के लिए, बस मच्छर बहुत काटते हैं, है ना, पूरा इस प्रकार से बनाया गया है। आप ठीक से कुछ भी नहीं कर सकते, आप भक्ति नहीं कर सकते। तो चाहे आप प्योर डिवोटी हो, चाहे आप पुअर डिवोटी हो, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, पर यह बट हमेशा रहता है हमारी लाइफ में, बट। और ये दुख का जो पूरा चक्र है, ये तब खत्म होगा जब हम राम की शरण लेंगे, भगवान राम की। क्योंकि हर कोई प्लेजर चाहता है, सुख चाहता है, जीवन में खुशी चाहता है ना। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख ना आए, है ना, आनंद ही आनंद हो ना? हर कोई मनुष्य हो, है ना, मनुष्यों में स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जवान, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कीड़े मकोड़े क्यों ना हो, जानवर क्यों ना हो, पक्षी क्यों ना हो, हर कोई क्या चाहते हैं, खुशी, हैप्पीनेस, प्लेजर। और ये तब हो पाएगा जब हम पूरी तरीके से भगवान राम की शरण लेंगे। जब तक हम राम की शरण नहीं लेंगे, ये प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान राम का मतलब क्या है, रम्यति इति रामः, वन हु गिव्स प्लेजर, जो आनंद प्रदान करते हैं, आनंद देते हैं। जो भी व्यक्ति अपने आप को कनेक्ट कर लेता है भगवान राम से, उसका जीवन कैसे हो जाता है, आनंदमय, आनंद से पूर्ण हो जाता है। भगवान राम किस प्रकार से, जैसे एक टैप हो और उस टैप में से नेक्टर निकल रहा हो, हनी निकल रहा हो, तो जो भक्ति में पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं, प्योर डिवोटीज हैं, उनके लिए वो नेक्टर कैसा है, अनइंटरप्टेड है, वो जॉय, वो प्लेजर अनइंटरप्टेड उनको मिल रहा है, बहता जा रहा है एकदम। जो साधक है, जो कोशिश कर रहे हैं, उनका थोड़ा इंटरप्टेड होता है ना, कभी कभी तो बहुत खुश होते हैं वो, है ना, कीर्तन चल रहा होता है बिल्कुल पागलों की तरह नाच रहे होते हैं, पता नहीं क्या हो गया है ना। कभी कभी कीर्तन चल रहा होता है और वो एक एंटिक पीस के समान होते हैं, एंटिक पीस देखा ना, कभी कोई लड़की हाथ में मशाल लेके खड़ी होती है, वो खड़े होते हैं, क्यों उदास है, क्या हुआ है, कुछ नहीं पता होता, बस इंटरप्टेड है वो जॉय, है ना। जो इम्पर्सनलिस्ट है उनकी सप्लाई कट होती है, उनको कोई नेक्टर नहीं मिल रहा होता। और जो मेटेरियलिस्टिक होते हैं, जो भौतिकतावादी होते हैं, उनके दूसरी टूटी खुली होती है ना, जिसमें से और दुख बह रहा होता है और वो उसी में इंजॉय कर रहे होते हैं। राम, भगवान राम स्वयं भगवान है, भरत भी भगवान है, पर जो भरत है वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, ही इज एक्टिंग एज अ ऑर्डर कैरियर ऑफ गॉड। लक्ष्मण भी भगवान है पर वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, ही इज एक्टिंग एज सर्वेंट ऑफ गॉड। शत्रुघ्न भी भगवान है पर वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, ही इज एक्टिंग एज सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ गॉड, दास दासानुदास। भरत का मतलब क्या है, भार वहती इति भरत। भरत को पूरा अयोध्या भार लगता था, बोझ लगता था, क्यों, बिना राम के, बिना राम के भरत को अयोध्या अयोध्या नहीं लगता था, उनको रिसोर्सेस नहीं चाहिए थे, फैसिलिटीज नहीं चाहिए थी, वो फैसिलिटीज उनके लिए बर्डन थी। कोई भी भक्त भक्ति में जो उन्नति कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, उसके लिए रिसोर्सेस फैसिलिटीज, अगर उसमें कृष्ण नहीं है, उसमें राम नहीं है, तो वो बोझ है, भार है, वो उसे कभी भक्ति नहीं करने देते। पर हम कैसे लेके चलते हैं, हम पूरा ये जो हम भगवान राम को बर्डन मानते हैं और रिसोर्सेज को क्या मानते हैं, यही सब कुछ है, दिस इज एवरीथिंग, ये सब कुछ है मेरे लिए। इसलिए रावण क्या चाहता था, रावण सीता को चाहता था पर राम को नहीं चाहता था, और श्रुतलेखा राम को चाहती थी पर सीता को नहीं चाहती थी। तो ये पैकेज है, एक लोगे तो दूसरा आपको लेना पड़ेगा साथ में, आप मना नहीं कर सकते। तो ये जितने भी रिसोर्सेस थे उनको बर्डन लगते थे, बोझ लगते थे ना? और ये जितने भी मटेरियल रिसोर्सेस हैं, जो भी भक्ति में प्रगति करने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए पहले ही हम इस भौतिक संसार में डूब रहे हैं, इस भौतिक संसार के सागर में, और उस डूबते हुए व्यक्ति के सर पे मान लीजिए कोई 2-3 किलो का एक सोने का मुकुट बना दे, है ना, ये लीजिए आपके लिए, आज से आप राजा हैं इस पानी के, है ना, तो वो मुकुट क्या करेगा उसके डूबने में, और सहायता करेगा, वो जल्दी डूबेगा, क्योंकि वो रिसोर्सेस और जो फैसिलिटीज हैं वो भगवान कृष्ण से, राम से कनेक्टेड नहीं है। पर अगर कोई भी चीज भगवान राम से कनेक्टेड है, वो जितनी मर्जी भारी क्यों ना हो डूबेगी नहीं। जैसे पत्थर, जिन पत्थरों पे भगवान की सेवा करने के भाव से राम लिखा गया था, वो पत्थर जितने मर्जी भारी क्यों ना हो, है ना, हमने तो लिटिल कृष्णा देखी है हमेशा, है ना, छोटे छोटे बंदर छोटे छोटे पत्थर उठा के ला रहे हैं, है ना, हमें लगता है इतने इतने पत्थर थे, बड़े बड़े पर्वत पहाड़ लेकर आए थे, है ना, वो पहाड़ भी डूब नहीं रहे थे, क्योंकि भगवान की सेवा की भावना थी उसमें, सर्विस एटीट्यूड था उसके पीछे। तो भरत का मतलब है भार वहती इति भरत, पूरा अयोध्या उनको भार लगता था, बोझ लगता था, बिना राम के ना, बिना भगवान की प्रेजेंस के। उसके बाद लक्ष्मण, लक्ष्मण का मतलब है लक्ष्मी संपन्न बाह्य प्राण इव परा। सबसे पहले लक्ष्मी संपन्न, पूरी तरीके से लक्ष्मी संपन्न थे वो, ही वॉज वेरी रिच, बहुत धनवान थे, और क्या थे, बाह्य प्राण, भगवान राम के वो एक्सटर्नल लाइफ थे, बाह्य प्राण थे। आजकल सभी लोग लक्ष्मी जी की बहुत पूजा करते हैं ना, दिवाली आएगी सभी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, है ना, राम कहीं नहीं होते उसमें, लक्ष्मी जी आ जाए, राम का क्या करना है हमारे को, श्री श्री राधा राधिकरमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की। तो सबको लक्ष्मी जी से मतलब है, राम से किसी को कोई मतलब नहीं है, है ना। पर जरा एक बार आप अगर हम देखें लक्ष्मी जी के पास क्या धन, लक्ष्मण के पास क्या धन था, वो जंगल में थे, जंगल में क्या धन था उनके पास, कोई धन नहीं था, किसी प्रकार का कोई वेल्थ नहीं था, अपनी पत्नी के साथ भी नहीं थे ना? तो फिर कैसे कहा जा सकता है वो धनवान थे, है ना, कैसे उनको लक्ष्मी संपन्न कहा गया। वो लक्ष्मी संपन्न कैसे थे, क्योंकि उन्होंने अपना सबसे बड़ा वेल्थ किसको माना था, भगवान की सर्विस को माना था, सेवा को, अपना धन उन्होंने भगवान की सेवा को माना था, इसलिए वो लक्ष्मी संपन्न थे। श्री प्रभुपाद बताते हैं, ग्रेटेस्ट वेल्थ फॉर डिवोटी इज द अपॉर्चुनिटी टू सर्व लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज। सबसे बड़ा धन एक भक्त के लिए है भगवान की सेवा करना और भगवान के भक्तों की सेवा करना। ये जो सेवा है यही हमारे लिए धन है, यही हमारे लिए प्रिविलेज है, यही हमारे लिए गिफ्ट है, और यही हमारे लिए ब्लेसिंग्स है, यही हमारे लिए आशीर्वाद है, वरदान है। और लक्ष्मण जी ने करके दिखाया कि उन्होंने कोई भी सेवा हाफ हार्टेड अटेम्प्ट से नहीं की, आधे मन से नहीं की। 14 वर्ष तक एक मिनट के लिए भी नहीं सोए वो, एक मिनट के लिए भी नहीं। तो कोई ना कोई एक्सक्यूज रख सकते थे, यू नो, कि चलो रात को जाग जाता हूं, दिन में तो राम जाग ही रहे हैं, अब सो जाता हूं। कभी कभी होता है ना फेस्टिवल से हम रात को बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो दिन में सो जाते हैं, फेस्टिवल खत्म होने के बाद सो जाते हैं ना? तो चलो हो गया फेस्टिवल और रात को जाग लिए, कोई बात नहीं, अब दिन में सो जाता हूं। नहीं, नो इंटरप्शन, किसी प्रकार की कोई इंटरप्शन नहीं थी सर्विस में, कोई हाफ हार्टेड अटेम्प्ट नहीं था, पूरी तरीके से अपने आप को भगवान की सेवा में लगाया था उन्होंने। श्रील प्रभुपाद के पास एक बार हंसदूत प्रभु आए थे और हंसदूत प्रभु ने श्रील प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद बैक टू गॉड मैगजीन सारी पड़ी हुई है, कोई भक्त नहीं है स्टेपल करने के लिए, कोई भक्त नहीं है बाइंड करने के लिए, कैसे काम चलेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। श्रील प्रभुपाद ने बोला आप कैसे कह रहे हैं कोई नहीं है करने के लिए, आपने मुझे अप्रोच तो नहीं किया, मैं चलता हूं। श्रील प्रभुपाद गए और कई घंटे बैठकर बैक टू गॉड मैगजीन को स्टेपल किया, बाइंड किया, है ना। तो श्रील प्रभुपाद ने कभी भी अपने जीवन में किसी भी सेवा को बर्डन की तरह नहीं लिया, बोझ की तरह नहीं लिया, है ना। किस प्रकार से कटेगी, किस प्रकार से टलेगी, है ना, उसमें से हल्का बहुत 19-20 भी फ्लक्चुएट कर जाता, थोड़ी सी ज्यादा होती है तो हमें लगता है बोझ आ गया, है ना, कहां से आ गई ये सेवा, है ना, मेरी जीवन खराब हो रहा है सेवा से। शत्रुघ्ना, शत्रुघ्न का मतलब क्या है, शत्रुघ्नति इति शत्रुघ्ना, वन हु किल्स द एनिमी, जो अपने एनिमीज को, है ना, जो उनके दुश्मन है उनको मारते हैं, है ना। पर शत्रुघ्न ने केवल एक ही एनिमी को मारा था, वो कौन थे, लवणासुर, है ना। कहां पर मारा था, मथुरा में, है ना। शत्रुघ्न ने मथुरा में लवणासुर को मारा था और इसके अलावा किसी असुर को नहीं मारा था, तो फिर उनको किस प्रकार से शत्रुघ्ना कहा गया है, क्योंकि शत्रुघ्न ने सबसे बड़े एनिमी को मारा था और वो एनिमी क्या है, हमारा फॉल्स ईगो, हमारा झूठा अहंकार। ये झूठा अहंकार जो हमें कोई भी सेवा करने के लिए रोकता है। भगवान की सेवा करना बहुत आसान है ना, ड्यूटीज की सर्विस करना बहुत आसान है क्योंकि वो करेक्ट नहीं करते, पर डिवोटीज की सर्विस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत करेक्ट करते हैं। तो शत्रुघ्न जो थे वो क्या थे, दास नहीं थे, दासानुदास थे। भरत जी भगवान के दास थे और शत्रुघ्न दासानुदास थे, है ना। दासानुदास बनना बहुत मुश्किल है ना, अपने अहंकार को पूरी तरीके से काटना पड़ता है। तो जो संबंध लक्ष्मण जी का राम के साथ था, वही संबंध शत्रुघ्न का भरत के साथ था। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों छोटे थे और जब लक्ष्मण रोते थे तो उनको चुप कराने के लिए कोई खिलौने नहीं देने पड़ते थे, बहुत सिंपल था, उनको चुप करवाना है उनको उठाकर किनके पास ले जाते थे, राम के पास। और जब शत्रुघ्न रोते थे तो उनको चुप करवाने के लिए भरत के पास ले जाते थे, बस इससे वो शांत हो जाते थे, संतुष्ट हो जाते थे। तो प्लेजर, हर कोई, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, हर कोई क्या ढूंढ रहा है, आनंद ढूंढ रहा है, प्लेजर ढूंढ रहा है, जॉय ढूंढ रहा है अपनी लाइफ में। और ये जॉय कब मिलेगा, जब हम ये जान जाएंगे कि हम भगवान के अंश हैं और जो भगवान है वो पूरी तरीके से आनंद से पूर्ण है। भगवान जो भगवान राम है वो रिजर्वॉयर ऑफ प्लेजर है। जब हम ये समझ जाएंगे तो हमारे जितने भी दुख हैं सारी चीजें खत्म हो जाएंगे। और भगवान राम ने अपनी लीलाओं में ना केवल इंस्ट्रक्ट किया है बल्कि खुद करके दिखाया है। ही एक्टेड लाइक अ ह्यूमन बींग, एक मनुष्य की तरह उन्होंने एक्ट करके दिखाया, हमें करके दिखाया कि हमें अपनी डे टू डे लाइफ में किस प्रकार से चलना चाहिए, किस प्रकार से वर्क करना चाहिए, किस प्रकार से एक्ट करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि कभी टीचर होते हैं, टीचर बच्चों को क्या करके दिखाते हैं, ए लिख के दिखाते हैं ना, पहले एक ऐसे लाइन डाली, फिर ऐसे लाइन डाली, फिर बीच में लाइन डाली, है ना। हालांकि वो टीचर को पूरी तरीके से नॉलेज है ना, टीचर कभी टीचर अपने नोटबुक में कुछ नोट्स बनाता है तो ऐसे थोड़ी ए लिखता है, पर वो टीचर क्या है, सिखाने के लिए, है ना, ऐसे ए बना के दिखाता है ताकि जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो अच्छी तरीके से समझ सके इस बात को, है ना, अंडरस्टैंड कर सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो भगवान राम ने ये करके दिखाया कि जब व्यक्ति के जीवन में अच्छे दिन आते हैं तो व्यक्ति बहुत कंफर्टेबल तरीके से सब चीजें करता है, पर जब किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें उसको कन्फ्रंट करना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है, उन चीजों से लड़ना पड़ता है, उन परिस्थितियों में कैसे व्यक्ति को डीलिंग करना चाहिए, ये भगवान राम ने सिखाया। क्योंकि अगर हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सक्सेस हो रहा है, तो रिलेशंस का इतना अच्छा पता नहीं लगता, है ना। ऐसे ही पुरुष और स्त्री के बीच में जब विवाह होता है ना, तो वो कुछ कसम खाते हैं, है ना। मुझे बहुत अच्छी तरीके से तो पता नहीं है क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, पर वो कसम खाते हैं कि अच्छे में, बुरे में, सक्सेस में, फेलियर में, किसी भी कंडीशन में, है ना, मरने तक हम एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के लिए कसम खाते हैं। ये थोड़ी खाते हैं, अच्छे में, सक्सेस में हम आपका साथ देंगे, जब बुरा होगा तो फिर देखते हैं फिर क्या करना है। नहीं, एवरी सिचुएशन दैट इज लव, दैट इज सेक्रीफाइस। तो भगवान राम ने अपने जीवन में कुछ डिफिकल्टीज को फेस करके दिखाया ताकि हम लोग कुछ अच्छा लेसन ले सके कि हमें अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे एक्ट करना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए। तो भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और चारों भाइयों के बीच में बहुत यूनिटी थी, बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध था और बहुत ही प्रोटेक्टेड थे वो दशरथ राजा के साथ और सुमित्रा कौशल्या कैकेयी के साथ, तीनों माताओं के साथ बहुत ही प्रोटेक्टेड थे। और जितने भी लोग थे भगवान राम को बहुत प्रेम करते थे, अपनी लाइफ से ज्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि भगवान राम भी हर भक्त को, हर अयोध्यावासी को अपनी लाइफ से ज्यादा प्रेम करते थे। इसलिए राधानाथ स्वामी महाराज अपने कोट में बताते हैं, लव अट्रैक्ट्स लव, है ना। क्योंकि भगवान राम हर किसी को प्रेम करते थे इसलिए हर अयोध्यावासी भी भगवान राम को प्रेम करता था। और जितने भी सिटीजन्स थे, जो अयोध्यावासी थे, वो वेट कर रहे थे कब वो दिन आएगा जब भगवान राम का कॉरोनेशन होगा, जब भगवान राम को राजा बनाया जाएगा। सभी अयोध्यावासी वेट कर रहे थे और ये अनाउंस हो गया था कि अगले ही दिन, नेक्स्ट डे भगवान का कॉरोनेशन होगा, अब भगवान को राजा बनाया जाएगा। और बहुत ही ज्यादा जश्न चल रहा था। भरत जो थे उस समय अयोध्या में नहीं थे, पर समहाउ भगवान के कुछ सुपीरियर अरेंजमेंट के कारण भगवान ने मंत्रा में कुछ एनवी को डाला। अब ये जो एनवी है, जब ये एनवी हमारे हार्ट में, हृदय में घुसती है, किसी भी हृदय के, किसी व्यक्ति के हृदय में, तो ये क्या करती है, हमारे जो वेल विशर्स होते हैं, हमारे जो शुभ चिंतक होते हैं, ये क्या दिखाते हैं कि हमारे वर्स्ट एनिमीज हैं, सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये व्यक्ति अगर मेरे जीवन से चले जाए तो मेरा जीवन इतना कंफर्टेबल हो जाएगा, सुकूनमय हो जाएगा, बस एक बार ये चले जाए। और ये एनवी किस प्रकार से होती है, इट्स लाइक अ ब्लेजिंग फायर। अगर ये अग्नि एक बार, ये आग, ये एनवी की आग अगर लग जाए तो जिस प्रकार एक जंगल में लगी हुई आग पूरे जंगल को राख कर देती है, ये जो एनवी की आग होती है हमारी सारी गुड क्वालिटीज को खत्म कर देती है, हमारे जितने अच्छे गुण होते हैं सारे अच्छे गुणों को खत्म कर देती है। तो हालांकि केकई राम को बहुत प्रेम करती थी, पर क्योंकि मंत्रा ने वो जो जहर था, वो जो पॉइजन था, मंत्रा ने पॉइजन क्या किया, केकई में डाल दिया, है ना। अब केकई क्या सोचने लगी कि जो राम है, ये राम क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ये राम ये प्लानिंग कर रहा है कि किस प्रकार से ये राजा बने और राजा बनने के बाद मुझे और मेरे पुत्र भरत को, है ना, गुलाम की तरह, नौकर की तरह रखा जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन में एसोसिएशन मैटर करता है, संघ मैटर करता है, किस प्रकार से एक संघ एक व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालता है। क्योंकि देखिए केकई बहुत पायस वुमेन थी, नहीं तो दशरथ महाराज ऐसे किससे विवाह नहीं करते, है ना। और इतनी पायस लेडी भी, इतनी सेंटली लेडी भी क्या हुआ, शी वॉज एक्टिंग लाइक अ एनवियस स्नेक, है ना, एक जहरीले सांप की तरह एक्ट करने लगी। और किस हद तक एक्ट करने लगी केकई, कि वो किसी का भी मर्डर करने के लिए तैयार थी, इमोशनल मर्डर, अपने पति का भी, अपने पुत्र का भी और पूरे किंगडम का भी। केकई को कोई भय नहीं था ना। देखिए एक व्यक्ति की एनवी किस प्रकार से सभी लोगों पर इफेक्ट डालती है। एक व्यक्ति एनवियस है सिर्फ, एक मंत्रा एनवियस थी, मंत्रा से केकई में गया, केकई से धीरे धीरे करते करते पूरा किंगडम खत्म हो गया, पूरा राज्य खत्म हो गया। तो ये नेचर है एनवी का, सेल्फिशनेस। जो ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, जब वो ग्रेट पर्सनालिटीज दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, अपने सुखों को सेक्रीफाइस करते हैं दूसरों की प्रसन्नता के लिए, पर जो व्यक्ति एनवियस होता है वो अपने सुखों के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी हद तक ठेस पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है। तो केकई ने क्या किया, केकई कोप भवन में चले गई और वहां पर रोने लगी, है ना। ब्रह्मास्त्र, जब सब चीजें फेल हो जाए तो यह ब्रह्मास्त्र यूज किया जाता है ना, रोना। तो केकई भ्रम, मतलब केकई ने रोना शुरू किया और जब दशरथ महाराज ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या चाहिए, तो केकई ने बोला कि पहले आप प्रॉमिस करो जो मैं मांगूंगी आप दोगे। दशरथ महाराज ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि केकई ऐसा भी कुछ मांग सकती है, तो उसने बोला हाँ ठीक है मैं दूंगा। तो केकई ने याद दिलाया कि आपको याद है आपने मुझे दो प्रॉमिसेस दिए थे, मुझे वो दो प्रॉमिस चाहिए। दशरथ महाराज ने बोला इट्स ओके, मांगो आप, क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने क्या मांगा, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य। जब दशरथ महाराज ने सुना तो दशरथ महाराज मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब आप किसी व्यक्ति पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो और कोई व्यक्ति अगर आपके साथ ऐसे करे तो आप कंप्लीटली आप हिल जाते हो कि ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, है ना। जैसे ध्रुव महाराज के इंसिडेंट में हम समझते हैं कि अगर ध्रुव महाराज को किसी बच्चे ने और हर्ट किया होता तो वो जंगल में थोड़ी गए होते तपस्या करने। अगर ध्रुव महाराज को किसी ने गलत बोला होता, उनकी माता ने डांटा होता, पिताजी ने क्यों ना डांटा होता, इतना बुरा नहीं लगा होता। ध्रुव महाराज को क्या चीज बुरी लगी थी, क्योंकि उन्होंने अपने पिता पे ट्रस्ट किया था, विश्वास किया था उन्होंने अपने पिता पे कि ये मेरी रक्षा करेंगे, ये मुझे प्रोटेक्ट करेंगे हर सिचुएशन में। और उनके पिता ने क्या किया था, उनकी किसी की साइड थोड़ी ली थी, ही वाज जस्ट न्यूट्रल, है ना। पर कभी कभी न्यूट्रल रहना कैसा होता है, नेगेटिव की साइड लेना होता है ना? तो भरत दशरथ महाराज ने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया केकई पे, और ट्रस्ट करके कुछ भी देने के लिए तैयार हो गए, पर केकई ने क्या किया, उस ट्रस्ट को, उस विश्वास को तोड़ दिया, और दशरथ महाराज अनकॉन्शियस होकर, बेहोश होकर जमीन पर गिर गए और रोने लगे। जब दशरथ महाराज इस प्रकार से रो रहे थे तो राम जी आए वहां पर, है ना। राम जी किस लिए आए थे, ब्लेसिंग्स लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए अपने पिता से, अपनी माता से, क्योंकि कल क्या हो रहा था, कल उनका राज्याभिषेक था, वो आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। पर जब उन्होंने अपने पिता को इस हालत में देखा, इस परिस्थिति में देखा, तो कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने माता से पूछा केकई से कि क्या हुआ, तो केकई ने पूरा बताया कि किस प्रकार से ये दो वर मैंने आपके पिताजी ने दो प्रॉमिसेस मुझे बोले थे और ये दो प्रॉमिस मैंने उनसे मांगे, और भगवान राम ने कोई दुख नहीं दिखाया इस चीज के लिए, बहुत खुशी से तैयार हो गए, हैप्पीली। उनको ये मानना था कि अगर मेरे पिता की, मेरे माता की इसमें खुशी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मैं खुशी से करूंगा ना। कभी कभी हमारे को भी कोई कार्य बोले जाते हैं, कुछ करने के लिए कुछ बोला जाता है ना, हमारी खुशी नहीं होती पर हम कर देते हैं, पर हमारे फेस पे आ जाता है ना, फेस पे आता है कि इसकी इच्छा नहीं कर रही, जबरदस्ती करना। पर भगवान राम ने अपने फेस से भी ये नहीं दिखाया कि इसकी इच्छा नहीं कर रही थी, उनकी इच्छा नहीं कर रही थी, ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे, और खुशी से उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब जैसे ही वो वन जाने के लिए तैयार हो गए तो सीता माता, जो एम्बलम है चेस्टिटी का, वो भी तैयार हो गए चलने के लिए, क्योंकि सीता माता कैसे रह सकती है भगवान राम के बिना। पर भगवान राम ने मना किया कि आप नहीं जा सकते साथ में, क्योंकि आप आज तक बचपन से पैलेस में ना राजकुमारी हैं, आप हमेशा बड़े बड़े महलों में रहेंगे, आप जंगल में कैसे जाएंगे, जमीन पे कैसे सो पाएंगे, है ना। आपने हमेशा बेस्ट फूड खाया है, सबसे अच्छा भोजन स्वीकार किया है, अब आप ये सब चीजें आप कैसे रूट्स खा पाएंगे पेड़ों की, है ना। आपने हमेशा इतने सुंदर सिल्क के कपड़े पहने हैं, अब आप किस प्रकार से पेड़ के पत्ते पहनेंगे, कैसे आप मतलब, और जंगल में जहरीले सांप होते हैं, और जहरीले सांप तो छोड़ो, जंगल में राक्षस भी होते हैं। पर सीता माता बिल्कुल माने नहीं, है ना। सीता माता ने जिद पकड़ी कि मैं आपके साथ जाऊंगी। अब सीता माता के जाने एग्री होने के बाद लक्ष्मण ने भी भगवान को अप्रोच किया, है ना। अब लक्ष्मण जी से ज्यादा आर्ग्यू करना बनता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो सोच लिया वो करना ही है, तो भगवान राम भी तैयार होगा कि ठीक है चलो। अब किस प्रकार से अयोध्या से जब भगवान जा रहे थे तो बताया जाता है पूरा अयोध्या ऐसे हो गया था जैसे पूरा अयोध्या मृत हो गया, डेड, कंप्लीटली डेड, पूरी तरीके से। भगवान के जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि अयोध्या के जो प्राण थे वो चले गए हैं ना, अब अयोध्या मृत है बिल्कुल। और जैसे ही भगवान राम ने अयोध्या छोड़ा, दशरथ महाराज ने अपने शरीर त्याग दिए, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान के नाम का जप करते हुए, है ना, भगवान का चिंतन करते हुए दशरथ महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। अब जब भरत महाराज आए वापस और अयोध्या में प्रवेश किया तो भरत महाराज ने क्या देखा, अब ये अयोध्या पहले जैसा नहीं लग रहा, ये कैसा लग रहा है, जैसे घोस्ट टाउन हो, एक भूतों का बंगला हो, ऐसा भूतों का बंगला जिसमें सब कुछ हर तरफ गंदगी है और हर कोई डिप्रेस्ड है, मायूस है, उदास है। भगवान राम के बिना सब कुछ खत्म हो चुका था, सब कुछ खत्म। जब भरत महाराज ने देखा तो भरत महाराज भागते हुए अपनी माता के पास गए, केकई के पास, और केकई एकमात्र ऐसे एक सिटीजन थे अयोध्या के जो खुश थे उस समय, है ना। केकई बहुत खुश थी भरत को देख के, है ना, बहुत खुशी से उन्होंने भरत को गले लगाया, है ना, भरत तुम आ गए बैठो, है ना, और सब कुछ बताना शुरू किया कि किस प्रकार से मैंने आपके पिता से दो वरदान मांगे, है ना, मैंने क्या वरदान मांगे, आपके पिता, आपके बड़े भाई राम को 14 साल का वनवास और आपके लिए राज्य। कहीं ने एक्सपेक्ट किया था कि जब ये सुनाएंगे भरत को, भरत बहुत खुश होंगे, बोलेंगे थैंक यू मम्मी, है ना, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, है ना, मैं आपने बचपन से मेरे लिए इतना कुछ किया है ना, आप मुझे कभी भूलती नहीं है, मेरी एब्सेंस में भी आपने मेरा इतना ध्यान रखा, है ना। केकई कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी भरत से, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। भरत बहुत गुस्से में आ गए, फ्यूरियस एकदम गुस्से में, और भरत महाराज ने बोला कि आप पूरी अयोध्या के दुश्मन हैं, ना केवल अयोध्या के, आप पूरे ह्यूमन काइंड के, पूरे मनुष्य जाति के आप दुश्मन हैं। आपके जो एक्ट है, ये जो आपका कार्य था, ये पूरे मनुष्य जाति को ठेस पहुंचाने वाला था। इसके बाद भरत रोते हुए, विलाप करते हुए कौशल्या के पास पहुंचे, और कौशल्या ने सोचा कि भरत बहुत खुश है। कौशल्या ने भरत को बोला कि चलो भरत, अब आप आ गए हो, अब राज्य अभिषेक के लिए तैयार हो जाओ, यही तो तुम चाहते थे। और भरत बहुत रोए इसको लेके कि नहीं, मैं इस राज्य में कभी नहीं बैठूंगा, बल्कि मैं जंगल में जाऊंगा और मैं भगवान राम को वापस लेके आऊंगा। और जब ये सुना कौशल्या ने, और जब ये अयोध्या वासियों ने सुना कि भरत महाराज राज्य लेने के लिए उन्होंने मना कर दिया है और वो भगवान राम को लेने जा रहे हैं जंगल में, तो जितने अयोध्या वासी थे, ऐसा लग रहा था उनमें दोबारा प्राण आ गए, दोबारा सब खुश हो गए, है ना, और सभी अयोध्या वासी तैयार हो गए, है ना, कि हम भी चलेंगे राम को लाने के लिए। बताया जाता है इतने अयोध्या वासी, इतने सोल्जर्स, इतने हाथी, इतने चैरिट्स, बताया था एक महीना लगा था रोड को तैयार करने में, भगवान को राम को लाने में, एक महीना। और जब लेने जा रहे थे जब, तो रास्ते में गुहा मिले, है ना, जो निषाद राज थे वो मिले, और उनको भी ये लगा कि, वो सोच रहे थे कि ये भरत कितना, मतलब इसने राम को वन में तो भेज दिया है, पर इसके अंदर भय है, भरत के अंदर, भरत के अंदर ये भय है कि अगर राम 14 साल के बाद वापस आ जाएंगे तो अपना राज्य वापस मांगेंगे, इसलिए पूरी सेना लेके आ रहा है अपनी राम को मारने के लिए। पर भरत महाराज जब राजा से मिले गुहा से, उन्होंने समझाया उनको, अपना बताया कि किस प्रकार से मैं राम को ठेस पहुंचाने जा रहा, मैं उनको वापस ले जाने जा रहा हूं। तो जो राजा गुहा थे वो भी साथ में चले कि मैं भी आपके साथ चलूंगा वापस लाने के लिए। और भगवान उस समय चित्रकूट में रह रहे थे। अब भगवान चित्रकूट में रह रहे थे, अगर आप चित्रकूट में जाएंगे तो बहुत ही पीसफुल प्लेस है, बहुत शांत, वहां पर वो कुआं अभी तक है जिसमें जब भरत महाराज राज्य अभिषेक के लिए सारा पैराफेरनलिया लेके गए थे, सारे तीर्थ स्थलों का जल वगैरह, वो उन्होंने कुएं में डाला था, किस जगह राम सीता सोते थे, किस जगह रहते थे, वो सारे स्थान अभी भी हैं। पर उस चित्रकूट में, उस वनवास की स्थिति में भगवान राम और सीता बहुत खुश थे। भगवान राम क्या सोचते थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नो मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। और क्या है, देखिए महल में थे तो सीता के साथ बात भी नहीं कर सकते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारी इतनी सारी थी, बात करने का मौका कुछ मिलता नहीं था। ही वॉज वेरी हैप्पी, वेरी ब्लिसफुल। पर जब वो सीता माता के साथ इतने खुश थे तो उन्होंने कंपन सुना, है ना, जैसे भूकंप आ रहा, पूरा उस समय चित्रकूट कांप रहा था। राम ने लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण देख क्या हो, ये क्या हो क्या रहा, ये कैसा हुआ है कि क्यों पूरा कांप रहा है ना। लक्ष्मण जी एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़े और उन्होंने क्या देखा, एक बहुत बड़ी सेना आ रही है। वो सेना कैसी है, उसके प्रारंभ में, शुरुआत में 9000 हाथी है, उसके पीछे 60,000 रथ चल रहे हैं, उसके पीछे 1,00,000 सोल्जर्स है ना। और भरत महाराज, लक्ष्मण ने क्या देखा, एक झंडा देखा, वो झंडा देख के वो समझ गए कि ये भरत महाराज का रथ है, और उसके पीछे सारे अयोध्या वासी थे, कोई अयोध्या में नहीं रुका, सब चले साथ में राम जी को वापस लाने के लिए। जस्ट इमेजिन करके देखिए, 9000 हाथी, 60,000 रथ, 1,00,000 सोल्जर और सारे अयोध्या वासी राम जी को लाने के लिए जा रहे हैं। भूकंप आ रहा था उस समय, पर लक्ष्मण जो थे, लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया। लक्ष्मण भी यही सोचने लगे कि ये जो भरत है, ये राम जी को मारने के लिए इस हद तक गिर गया है, राम जी को मारने के लिए सेना लेके आ रहा है ना, मैं अभी अकेला इसको खत्म कर दूंगा। और बताया था वाल्मीकि जी अपने रामायण बता रहे कि उस समय जो क्रोध था लक्ष्मण जी की आंखों में, वो क्रोध ये दिखा रहा था कि वो अकेले कैपेबल थे उस समय पूरी सेना को खत्म करने के लिए। पर राम जी ने जब देखा कि लक्ष्मण अननेसेसरी क्रोध कर रहे हैं, राम जी ने उनको डांटा कि ये नीच विचार तुम्हारे अंदर कैसे आ गया, ये सोच तुम्हारे अंदर कैसे आ गई, भरत कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि भरत आ रहे हैं यहां पर मुझे साथ में ले जाने के लिए ना, भरत कभी मेरे बारे में ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर धीरे धीरे करके भरत महाराज पास में पहुंचे, भरत महाराज के साथ में शत्रुघ्न और गुहा थे, उनके पीछे वशिष्ठ मुनि और तीनों माताएं थी, उनके पीछे पूरी सेना और फिर सारे के सारे अयोध्यावासी थे। हालांकि जिस जगह पे भरत चल रहे थे वो जगह बिल्कुल सीधी थी, पर फिर भी भरत जो थे रो रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने राम जी को देखा जटा रखे हुए, वो वृक्ष के पत्ते पहने हुए, तो भरत जी से बर्दाश्त नहीं हुआ कि किस प्रकार से उन्होंने राम सीता को किस अवस्था में देखा। वो रोने लगे और बताया था प्लेन लैंड पर भी वो सीधा चल नहीं पा रहे थे, वो गिर रहे थे फिर खड़े हो रहे थे, फिर गिर रहे थे फिर खड़े हो रहे थे। किसी तरीके से वो भगवान राम तक पहुंचे और भगवान राम के पास पहुंचने के बाद उन्होंने भगवान राम के चरणों में गिन के भगवान से प्रार्थना की कि आप वापस चलिए। चित्रकूट में अभी भी वो स्थान है जहां पर राम और भरत का मिलाप हुआ था। बताया था वो मिलाप इतना इंटेंस था कि पत्थर पिघल गए थे। अभी भी वो स्टोन है, पत्थर है जहां भगवान राम के और भरत के चरणों के निशान है और उनकी बॉडी के निशान है, वो जो पत्थर पिघल गए थे ना? और जिस जगह पे कौशल्या और सीता माता मिली थी वो पत्थर भी पिघल गए थे। वो स्थान अभी तक है वहां पर। इतना प्रेम, इतना उनका सेपरेशन इतना इंटेंस था कि स्टोन पत्थर पिघल गए थे। भगवान राम ने देखा कि सभी लोग हैं वहां पर, सभी हैं, सारे अयोध्यावासी हैं, तीनों माताएं हैं, मेरे पिता का हाथी है पर पिताजी नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने भरत से पूछा कि पिताश्री कहां पर है। भरत ने बताया कि मेरे आप दशरथ जी ने, हमारे पिता ने आपके सेपरेशन में, आपके विरह में, आपके नाम का जप करते हुए, आपके रूप का दर्शन करते हुए, स्मरण करते हुए प्राण को त्याग दिया है। जब राम जी ने यह सुना तो राम जी बहुत रोए, बहुत लमेंट करने लगे। लक्ष्मण जी को जाके बताया, सीता जी को बताया, राम लक्ष्मण सीता तीनों बहुत रो रहे थे और भरत महाराज तीनों को चुप करा रहे थे, क्योंकि भरत महाराज भी सुबह उसी फेस से निकले थे। अब वो तीनों को चुप करा रहे थे ना? फिर राम जी ने अपने पिता के लिए जो लास्ट राइट्स थे वो परफॉर्म किए और फिर भरत महाराज ने राम जी से बेग किया, प्रार्थना करने लगे कि आप वापस चलिए। हमारी हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में हमेशा यही हुआ है कि बड़ा व्यक्ति, बड़ा पुत्र है वही राजगद्दी पे बैठा है, आप चलिए साथ में अयोध्या में चलिए, आप अयोध्या के राजा बनिए। राम जी ने मना किया कि मैंने अपने पिता को प्रॉमिस किया है, वादा दिया है, और ये वादा, इस वादे को, इस प्रॉमिस को मैं कभी तोड़ूंगा नहीं ना? पर भरत मार ने बोला कि मैं राजा कैसे बन सकता हूं। मतलब भरत मार ने बोला कि क्या एक गधे का घोड़े के साथ कोई तुलना की जा सकती है ना? क्या एक गधा घोड़े के बराबर भाग सकता है? क्या एक चिड़िया गरुड़ जी के बराबर उड़ सकती है ना? जिस प्रकार से चिड़िया गरुड़ जी के बराबर नहीं उड़ सकती, एक गधा घोड़े की तरह नहीं भाग सकता, उसी प्रकार से मेरा और आपके बीच में, मैं आपकी जगह उस गद्दी पर नहीं बैठ सकता, आप ही को चलना पड़ेगा ना? पर भरत महाराज राम जी से डिबेट में हारते जा रहे थे और जब वशिष्ठ मुनि ने देखा कि भगवान भरत हार रहे हैं तो उन्होंने इंटरफेयर करने का सोचा ना? उन्होंने बोला राम जी को कि मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं गुरु होने के नाते, चलो आप साथ में। पर भगवान राम अपने प्रॉमिस पर दृढ़ रहे और उन्होंने मना कर दिया कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। हर किसी ने, हर अयोध्यावासी ने, हर किसी ने ट्राई की भगवान राम को बोलने की, आप चलिए साथ में, सब चलिए। केवल कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे कि भगवान राम वापस जाए, वो थे देवी देवता। क्योंकि देवी देवताओं ने तो भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान आप आइए और रावण को मारिए। अब देवी देवता, जब भरत इतना कन्विंस कर रहे थे, देवी देवता डर रहे थे है ना, कि अगर राम जी वापस चले गए अपने महल में तो वो तो भूल ही जाएंगे कि मारना भी किसी असुर को है ना, तो बहुत डर रहे थे। क्योंकि देवी देवता की दुर्दशा बहुत खराब थी उस समय। रावण ने सब्जी कटवाता था उनसे ना? सब्जी काटना अच्छी बात है डीटीज के लिए ना? पर सब्जी काटते थे देवी देवता है ना। जो नवग्रह थे वो सीढ़ियां बनते थे ना, उनके पेट के ऊपर पैर रख के रावण ऊपर चलता चढ़ता था ना? पेट केवल एक की पीठ पे रखता था, वो था शनि ना। एक बार रावण ने डांटा भी था उसको कि आपने पीठ क्यों मोड़ी हुई है ना, आप क्यों नहीं मुड़ के देखते मेरी तरफ। तो शनि ने बोला कि जिसकी तरफ मैं मुड़ के देखता हूं उसकी साठ सती शुरू हो जाती है, अभी भी आप चाहते मैं मुड़ के देखूं। तो उसने बोला हाँ। तो फिर रावण चढ़ा एक बार तो शनि भी बिल्कुल लेटे हुए थे पेट के बल। जैसे ही रावण ने शनि के पेट पे पैर रखा और शनि ने रावण को देखा, उसकी साठ सती शुरू हो गई ना, अब उसके गिरने का समय शुरू हो गया। तो देवी देवता नहीं चाहते थे, देवी देवता सोचते थे ना जाए राम, यहीं पर रहे, यहां पर रहेंगे तो ही तो मारेंगे इनको ना। पर भरत महाराज ने यह निश्चय कर लिया कि अगर राम जी तैयार नहीं है अयोध्या का राज्य लेने के लिए तो मैं भी अयोध्या की गद्दी पे कभी नहीं बैठूंगा। अगर राम जी दृढ़ हैं तो मैं भी दृढ़ हूं ना। तो भरत महाराज राजा बनाने के लिए राम जी के लिए एक खड़ाऊ लेके आए थे, सोने के खड़ाऊ। वो सोने के खड़ाऊ उन्होंने राम जी को पहनाए और ये वॉ लिया, ये शपथ लिया कि मैं इनको कॉरोनेट करूंगा, मैं इन खड़ाऊ को राजा बनाऊंगा और ये खड़ाऊ जो है ये राजे करेंगे ना। और भरत महाराज ने क्या बोला, जिस प्रकार से भगवान राम इस वक्त जंगल में रह रहे हैं, मैं भी 14 वर्ष तक जंगल में रहूंगा। जिस प्रकार से भगवान जटाएं बांधे हुए हैं ना, मैं भी जटाएं बांध के रहूंगा। जिस प्रकार से भगवान पेड़ों की खाल पहन के रहेंगे, मैं भी वही पहन के रहूंगा। जिस प्रकार से भगवान रूट्स खाएंगे ट्रीज की, पेड़ों की, मैं भी वही खाऊंगा, है ना। बताया जाता है कि भरत महाराज अयोध्या में भी कभी राम जी के बराबर नहीं सोए थे। राम जी जिस स्थान पर सोते थे, भरत महाराज से थोड़े नीचे स्थान पर सोते थे। तो क्योंकि अब राम जी जमीन पर सोते थे, तो भरत महाराज जमीन पर नहीं सो सकते थे क्योंकि वो राम जी के बराबर था। तो भरत महाराज ने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे के अंदर सोना शुरू किया, राम जी से नीचे, राम जी के बराबरी में नहीं सोए, और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ड्यूटीज को अच्छी तरीके से करना शुरू किया। और राजा थे उस समय भगवान के खड़ाऊ। अब हम इस समय की टीचिंग ले सकते हैं कि भरत महाराज ने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया, इस समय अपनी पोजीशन को रिजेक्ट कर दिया, अपने टाइटल को रिजेक्ट कर दिया, सारी प्रेस्टीज को रिजेक्ट कर दिया, है ना, पर सर्विस को एक्सेप्ट किया, सेवा नहीं छोड़ी। तो कोई भी पोजीशन, कोई भी टाइटल, कोई भी प्रेस्टीज हमारे से क्यों ना छिन जाए, पर हमारी सेवा हमारे से कभी नहीं छिननी चाहिए, हमें सर्विस से अटैच रहना चाहिए। क्योंकि जितनी भी फैसिलिटीज हैं, जितनी भी ये रिसोर्सेस हैं, ये किस लिए हैं, भगवान की सेवा करने के लिए है ना। अभी ये प्रतिष्ठा के लिए कोई व्यक्ति किस हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है ना, चाहे उसको लाई करना पड़े, क्राई करना पड़े, डाई करना पड़े, पर किसी भी तरीके से कुछ पोजीशन मिल जाए। भगवान के नाम पे भी कई लोग अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे होते हैं ना, जिससे भगवान से इसका कोई संबंध नहीं होता, है ना, केवल अपने यश को बढ़ाने के लिए, भक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं। यश बढ़ रहा होता है, भक्ति नीचे जा रही होती है ना, प्रेस्टीज पोजीशन बढ़ रही होती है ना, टाइटल्स बढ़ रहे होते हैं, पर भक्ति इंक्रीज नहीं हो रही होती। जैसे जैसे कृष्णा कॉन्शियस में डेज बढ़ते हैं, हमारी इच्छा यही होती है कि हमारी जो हमें माला पहनाई जाती है, इसका साइज, क्वालिटी और थिकनेस बढ़ती रहे, पर भक्ति वैसे की वैसी रहती है, भक्ति कभी इंप्रूव नहीं होती। तो भरत महाराज ने यहां पर दिखाया अपने चरित्र से कि वो किसी भी प्रकार की, किसी पोजीशन से, किसी टाइटल से अटैच नहीं थे, भगवान की सर्विस से अटैच थे। और भगवान की सर्विस करते हुए भरत महाराज क्या करते थे, रोज भगवान के खड़ाओं के पास जाते थे और रिपोर्ट करते थे। रिपोर्ट करने के साथ साथ क्या करते थे, इंस्ट्रक्शंस लेते थे खड़ों से, भगवान के शूज से। और इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ क्या करते थे, जो भी अच्छा होता था राज्य में, उसका सारा क्रेडिट भगवान के खड़ों को देते थे। सो दिस इज प्योर डिवोशनल सर्विस। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारे जीवन में कुछ भी क्यों ना आ जाए, पर भगवान की सेवा नहीं छूटनी चाहिए, सर्विस नहीं जानी चाहिए। जब जब कोई व्यक्ति रामलीला सुनता है, राम जी के बारे में सुनता है, लक्ष्मण जी का भगवान से राम से प्रेम, सेवा भाव, सीता माता का भगवान से सेवा भाव, भगवान के प्रति, है ना, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है ना। हर पति चाहता है कि उसकी पत्नी सीता की तरह हो, है ना, पर उसको राम की तरह कितना बिहेव करना चाहिए वो कभी नहीं सोचता, है ना। हर सीनियर ये चाहता है कि उसका जूनियर लक्ष्मण की तरह हो, है ना, वो राम की तरह कितना बिहेव कर रहा है, कितना प्रेम दे रहा है, कितना केयर कर रहा है, कभी नहीं सोचता, है ना। हर बड़ा भाई, हर बड़ा मेंबर सोचता है कि मेरा घर का सदस्य राम की तरह हो, मैं राम की तरह हूं, पर उसको कितना केयर करना है वो ये नहीं सोचता। तो हम भगवान राम के यहां पर, भरत जी से, राम जी से, सीता माता से यहां पर सीख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रेम और सेवा के माध्यम से, एक्चुअली यही फाउंडेशन है, सेवा ही हर चीज के पीछे, प्योर डिवोशनल सर्विस, भगवान के प्रति की गई सेवा, है ना। अगर हमारे से जीवन में कभी भी कुछ भी छीन लिया जाए, पर अगर हमारे को सेवा मिल जाए, तो हमें सर्विस के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और यही हमने सीखा है अपने फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद से। श्री प्रभुपाद ने हर परिस्थिति में, हर सिचुएशंस में कभी सर्विस को रिजेक्ट नहीं किया, हर सिचुएशंस में सर्विस को एक्सेप्ट किया और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहे। तो रामनवमी आने ही वाली है, 2 दिन बाद, हमें राम जी से प्रार्थना करनी चाहिए और राम जी से सीखना चाहिए, राम जी के चरित्र से, कि किस प्रकार से हम अपने सेवा भाव को बढ़ाएं, अपने अंदर भी हम ऐसी क्वालिटीज लाएं ताकि हम सभी भक्तों को, सभी लोगों को इतना प्रेम दे सके कि हर तरफ कृष्ण भावनामृत का जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का एटमॉस्फेयर हर तरफ फ्लरिश करे, हर तरफ कृष्ण भावनामृत का माहौल। तो मैं यहीं पर विराम दूंगा क्योंकि समय हो गया। थैंक यू। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। गॉड प्रेमानंद।